अब इस संबंध में अगर किसी भाई बहन के मन में कोई प्रश्न उठता हो तो और उस ढंग से समझाया जाए, बात की जाए, बात ही तो करना है, करना क्या है। अब इसमें क्या कठिनाई है भैया, हम पर जो जिम्मेदारी है उसके पूरे करने में कोई कठिनाई है नहीं। अगर हमें कठिनाई मालूम होती है इस जिम्मेदारी पूरा करने में तो हमारा कोई यह भ्रम है। मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा हमें वो जीवन नहीं मिल सकता जिसकी हमको मांग है। मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है अपितु तो दूसरों के लिए उपयोगी होना है। इतनी सी तो बात है, मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य अपने लिए नहीं है, उसके द्वारा किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है अपितु तो उपयोगी होना है। इसी को कहते हैं कर्तव्य विज्ञान, इसी को कहते हैं धर्म विज्ञान। उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, इसको कहते हैं अध्यात्म विज्ञान। धर्म विज्ञान की पूर्णता से अध्यात्म विज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसने ये स्वाधीनता हमें दी है वही अपना है, उसकी प्रियता ही अपना जीवन है। यह आस्तिक विज्ञान, ये हक परस्ती कहो, ईश्वर भक्ति कहो, जिसने हमें ये स्वाधीनता दी है कि हम धर्म विज्ञान के द्वारा जगत के लिए उपयोगी, अध्यात्म विज्ञान के द्वारा अपने लिए उपयोगी, उस दाता में आत्मीयता स्वीकार करना, उसकी प्रियता और स्मृति जगाना, ये आस्तिक विज्ञान है। यानी अब आप संसार को मान के चलो तो भी साधक, और आत्मा को मान के चलो तो भी साधक, और परमात्मा को मान के चलो तो भी साधक। तीनों दृष्टियों से तुम साधक हो। अगर ये बात आपको जचती हो, रुचती हो, सही मालूम होती हो, कोई इसमें शक और शुबा न मालूम होता हो, तो इस पर विचार करके, मनन करके, अनुभव करके देख लो। और देखो ये जीवन का व्रत है, मिली हुई वस्तु मेरे काम नहीं आएगी इसको स्वीकार करना व्रत है। मिले हुए के द्वारा दूसरों की सेवा करना ये व्रत है। बदले में कुछ नहीं चाहिए ये व्रत है। अगर ये तीन व्रत आप ले लेते हैं तो आपको वो जीवन जिसका कभी नाश नहीं होता, वो जीवन जिसमें जड़ता की गंध नहीं है, वो जीवन जो रसरूप है मिल सकता है। इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात के लिए आप कितना समय लगाएंगे ये आपकी मर्जी पर है। वास्तव में तो ये वर्तमान की चीज है। देखो व्रत को स्वीकार करना, इसकी हमें स्वाधीनता है कि नहीं? ये मिला हुआ मेरे लिए नहीं है। अब जब शरीर छूटेगा तो मेरी क्षति होगी? मेरी तो नहीं होगी, क्यों? मेरे लिए था ही नहीं। ये मिला हुआ मेरे लिए नहीं है, अगर वो नाश होगा तो मेरी क्षति हो जाएगी। लेकिन हमें क्यों मालूम होता है मेरी क्षति हो जाएगी? इसलिए मालूम होता है कि हम मिले हुए के द्वारा किसी न किसी प्रकार का सुख भोगते हैं। गुरु बनने का शौक, नेता बनने का शौक, राष्ट्रपति बनने का शौक, प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक, जी ये जो हम भोगते हैं, इसलिए हमको मालूम होता है कि शरीर नाश हो जाएगा तो हमको हमारा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। अगर हमें पराधीनता जनित सुख नहीं भोगना है, या हमें पराधीनता जनित सुख पसंद नहीं है, तो शरीर के नाश होने से मेरा क्या नाश हो जाएगा? क्या राय? अच्छा, और दूसरे लोग भी अगर सत्य को स्वीकार करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि शरण की वजह से हमको बड़ा सुविधा मिलती है, तो तुम सुविधा देना सीखो दूसरों को। अगर शरण ने तुम्हें सुविधा दी है तो सुविधा दो, आदर दिया है तो आदर दो, प्यार दिया है तो प्यार दो। तो वो प्यार के आधार पर जब तुम कहते हो कि शरण का शरीर नाश नहीं होना चाहिए, तो वो प्यार का महत्व है, शरीर का महत्व है? अगर आपने भी इन तीनों बातों को मान लिया कि मैं दूसरों को आदर दूंगा, प्यार दूंगा जी, तो आप और शांत एक हो गए कि दो हो गए?
एक हो गए
हैं। जब एक हो गए तो आदर देने की भावना, प्यार देने की भावना, सहयोग देने की भावना, ये कभी नाश होगी? बोलो, ये तो सत्य है, ये तो कभी नाश नहीं होगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर हमको सचमुच कोई आदमी ऐसा मिला है कि जिसने हमको आदर दिया है, प्यार दिया है, सहयोग दिया है, हमारे प्रति सद्भाव रखा है, तो इन बातों को हम अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते? एक दिन एक घटना सुनाया आपको। हम ट्रेन में जा रहे थे, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल में बैठे हुए थे, उनकी 9 साल की भतीजी, भाई की लड़की मर गई थी, उसके मुंह से आबद बहुत दुखी थे, और ट्रेन में प्रसंग बस उस लड़की के गुणगान कर रहे थे, और गुणगान करते करते यहां तक उन्होंने कहा कि एक दफा मैं बीमार हो गया तो वो बच्ची मेरे चारों ओर घूमी और कहा, हे भगवान, हमारे चाचा जी अच्छे हो जाए, मैं मर जाऊं। किसी बादशाह की भी बात है,
बाबर की
है, मैं मर जाऊं। तो हमने उनको बहुत दुखी देखा, तो मैंने पूछा कि पंडित जी, अगर वो लड़की जिंदा रहती, बड़ी हो जाती, उसके शादी करते कि नहीं? कि जरूर करते। तो आपसे अलग होती कि नहीं? जरूर होती। अगर लड़की के गुण आपको पसंद है तो उन्हें आप धारण कर लीजिए, और ये तो आप जानते हैं कि लड़की आपसे अलग होती, तो वो चीज आपसे अलग हुई है जो अलग होती है, क्या उसके गुण अलग हुए हैं? तो किसके लिए रोते हैं आप? उस चीज के लिए रोते हैं जो अलग होगी ही, गुण तो अलग होते नहीं। तो बोले, इस तरह से मैंने सोचा नहीं था। मैंने कहा, पंडित जी, अगर आपसे पूछा जाए कि मोह दुख का मूल है, तो बोले, इस पर किताब लिख सकता हूं, लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन क्या आपने अनुभव किया कि मोह दुख का मूल है? तो एकदम शांत और गंभीर हो गए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, न अपने शरीर छूटने का दुख हमको होना चाहिए, न हमारे शरीर छूटने का दुख किसी और को होना चाहिए, क्योंकि जिन कारणों से तुम इस शरीर को पसंद करते थे, वो बातें तो आप अपने में भी रख सकते हो ना, क्या रहा है जी? तो मैं आपसे पूछता हूं कि शरीर गुरु है कि जीवन का जो सत्य है वो गुरु तत्व है?
जीवन का सत्य।
तो जीवन के सत्य को आप स्वीकार कर सकते हो कि नहीं? तो सदा सदा के लिए अपने गुरु से अभिन्न हो सकते हो कि नहीं? क्या
सकते हैं?
तो अगर ये बात आपको जचे, रुचे, पसंद आए, तो थोड़ा मनन कर लिया जाए। हमारे जितने पथ प्रदर्शक हुए हैं, रहनुमा कहते हैं, क्या कहते हैं,
रहनुमा
हुए हैं, उनमें जो खूबियां थी, उनमें जो सत्य था, क्या वो सत्य आज नहीं है? क्या हम अपने पथ प्रदर्शकों के सत्य को अपना नहीं सकते जी?
अपना सकते हैं।
तो मानव शासन ने मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताया है कि भैया, तुम सत्य को स्वीकार करो, और सत्य कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जिसे तुम नहीं जानते हो। उदार होना सत्य है, अचाव होना सत्य है, आत्मीयता स्वीकार करना सत्य है। बोले, आत्मीयता किसे स्वीकार करें? क्योंकि जिसका प्रेम आपको अभिष्ट हो, जिसका प्रेम आपको प्राप्त करना हो, उसकी आत्मीयता स्वीकार करना सत्य है, और अचाव होना सत्य है, उदार होना सत्य है, बुराई रहित होना सत्य है। जो जीवन का सत्य है उसे आप स्वीकार करें, इसी का नाम है सत्संग। और इस सत्संग से ही आपको साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात आपकी मान पूरी हो जाएगी। सत्य को स्वीकार करना आपकी जिम्मेदारी है, और मान पूरा होना स्वाभाविक है। सत्य को स्वीकार करने से मांग पूरी हो जाती है। सत्य को स्वीकार करने का नाम सत्संग है। और सत्य की चर्चा करें, सत्य का चिंतन करें, किसी अंश में सत्य कार्य भी करें और सर्वांश में सत्य को स्वीकार न करें तो हमारा काम बनेगा
नहीं।
जी
नहीं।
इसलिए महानुभाव, हम सभी को मानव होने के नाते, साधक होने के नाते, सत्य को सर्वांश में सदा के लिए अपने द्वारा अभी स्वीकार करना है। ये आज की चर्चा का सार सर्वस्व है। तो जिस प्रभु ने हमें सत्य को स्वीकार करने की स्वाधीनता दी है, उस प्रभु की महिमा गाएं और सत्य को स्वीकार कर सदा सदा के लिए कृतकृत हो जाएं। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्यार। अब संसार को नापसंद करने में आप स्वाधीन है या पराधीन है?
स्वाधीन।
ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति में भी आप स्वाधीन है। जो जो साधक संसार को नापसंद करने में स्वाधीन है, वही साधक परमात्मा की प्राप्ति में स्वाधीन है। अब कठिनाई क्या होती है कि हम संसार को पसंद करते रहते हैं और परमात्मा से मिलना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं होगा। संसार को पसंद करते हुए परमात्मा से मिलना संभव नहीं। हाँ, एक बात है कि संसार के द्वारा हमें जो वस्तु प्राप्त है वो संसार की सेवा में लगा दें, सामर्थ्य प्राप्त है वो भी सेवा में लगा दें, योग्यता प्राप्त है वो भी सेवा में लगा दें। हमसे गलती क्या होती है कि सेवा तो हम करते नहीं, न वस्तु के द्वारा, न योग्यता के द्वारा, न सामर्थ्य के द्वारा, न सद्भाव के द्वारा सेवा करते नहीं। और क्या चाहते हैं कि संसार हमको नापसंद हो जाए। तो कैसे होगा भाई, सेवा नहीं करोगे तो सेवा का उल्टा मालूम क्या होता है, भोग। तो भोग करोगे, अगर सेवा नहीं करोगे तो भोग करोगे। अगर मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य को सेवा सामग्री नहीं बनाते हो तो भोग सामग्री बन जाएगी, और भोग करोगे तो मोह और आसक्ति में आबद्ध हो जाओगे। क्या कारण है कि हमारे जीवन का मोह नाश नहीं होता, आसक्ति नाश नहीं होती? इसलिए हम सेवा नहीं करते हैं, भोग करते हैं। भोग होता है ममता से, कामना से, तादात्म से, इनके बिना भोग की सिद्धि नहीं होती। यदि हम सेवा करना पसंद करें तो सेवा होगी प्राप्त वस्तु से, अप्राप्त से नहीं, प्राप्त से, प्राप्त सामर्थ्य से, प्राप्त योग्यता से, प्राप्त के प्राप्त की ही सेवा होती है। क्या है, अप्राप्त की सेवा होती है क्या, और प्राप्त के ही द्वारा होती है। तो जो जो प्राप्त है, उस जो जो वस्तु प्राप्त है, जो जो व्यक्ति प्राप्त है, जो जो योग्यता सामर्थ्य प्राप्त है, उसके द्वारा प्राप्त व्यक्तियों की सेवा कीजिए। अथवा प्राप्त परमात्मा को पसंद कीजिए, प्राप्त की सेवा कीजिए और प्राप्त ही परमात्मा को पसंद कीजिए। तो जो संसार तुम्हें प्राप्त मालूम होता है तो वो तो आपका सेव हो गया, और परमात्मा जो दिखाई नहीं देता है वो आपका प्रिय हो गया। तो परमात्मा हमारा प्रेम पात्र है, संसार हमारा सेवा का सेव्य है। तो संसार की सेवा और परमात्मा का प्रेम अगर आपको पसंद आ जाए तो अभाव का अभाव हो सकता है। परमात्मा का प्रेम और संसार की सेवा आपको पसंद आ जाए, सार निकला नहीं?
जी
समझ आई ना। यानी संसार, अब लोग गलती क्या करते हैं, देखिए हमसे गलती क्या होती है, बड़े बड़े लोगों से होती है, क्या करते हैं कि संसार की सेवा नहीं पसंद करते। संसार की सहायता से शरीर को सुखपूर्वक रखना पसंद करते हैं। तो गंभीरता सोचना सी, संसार की सहायता से हम शरीर हमारा भूख लगे तो भोजन मिल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए, नींद लगे तो बिस्तर मिल जाए। यानी जो जो शरीर की जरूरत पैदा हो وہ پوری ہوتی جائے اس کو ہم پسند کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شریر کی ساری ضرورت کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ کبھی نہیں ہوگا جیسا آپ انبھو کریں کہ ہمیشہ بھوک لگتی رہے اور ہمیشہ ہی بھوجن ملتا رہے, ہمیشہ پیاس لگتی رہے اور ہمیشہ ہی پانی ملتا رہے, ہمیشہ ہی کامنا اتپن ہوتی رہے اور پوری بھی ہوتی رہے. ایسا ہوتا ہے کبھی کیا رہے؟ یہی کارن ہے کہ آج کا سادھک بھٹک رہا ہے, بڑی بری طرح سے بھٹک رہا ہے. اس بات کے لیے کہ صاحب کسی طرح سے ہمارے شریر کی آوشیکتا پوری ہو جائے, مان کے روپ میں, بھوگ کے روپ میں, ضرورت کے روپ میں, اس لیے بھٹک رہا ہے. تو جیون کا ستیہ ہمیں یہ پرنا دیتا ہے کہ شریر کی آوشیکتا کو سماج کی مرضی پر چھوڑ دو اور شریر کے دوارا یتھا سمبھو سماج کی سیوا کرو. شریر کے دوارا یتھا شکتی سیوا کرتے رہو, شریر کی آوشیکتا کو سماج کی مرضی پر چھوڑ دو. اگر سماج شریر کی آوشیکتا کو پورا نہ کرے تو تمہیں کوئی گھاٹا نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ شریر تمہارے ساتھ سدیو رہے گا ہی نہیں, تو تمہارا کیا گھاٹا پڑے گا؟ کسی سیوا پران شریر کی سماج اگر پرواہ نہیں کرتا ہے تو سماج کی چھتی ہوتی ہے کہ اس سیوک کی چھتی ہوتی ہے؟ کیا ہے؟
سیوک ہم نے بڑے دن دیکھا ہے.
ارے جھنجھٹ کی دم تک بات سن لے, تو بڑا بھاری درشن ہو گیا ہے, مانسک روگی بنا بیٹھا کر لیا. میں آپ سے نویدن کرتا ہوں سیوا کرنے میں جھنجھٹ آتے ہیں تو کون سی پرورتی ایسی جو جھنجھن ہے؟ سیوا نے پرورتی پرورتی اور دوسرے ہیت کے لیے. تم اپنے سکھ کے لیے پرورتی کرتے ہو, دوسرے ہیت کے لیے نہیں کرتے. تو جھنجھٹ تمہاری بیوقوفی میں ہے کہ سیوا میں؟ میں آپ سے بڑی بھاری نمرتا کے ساتھ یہ بات نویدن کرنا چاہتا ہوں. اس پر لوگوں کو گمبھیرتا سے وچار کرنا چاہیے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری رچی پورتی کا سادھن شریر ہے, وہ کبھی بھی ان کو شانتی نہیں ملتی. شریر ہے, دوسرے کی اس رچی کو پورا کرو جو تمہارے گیان اور سامرتھ کے انوسار ہے. سیوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو تمہاری سامرتھ کے انوروپ ہے وہ سیوا کرنا ہے, جو تمہارے گیان کے انوسار ہے وہ سیوا کرنا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں گیان اور سامرتھ کے انوسار کاری کرنے میں کیا کٹھنائی ہے؟ کوئی ایماندار نہیں کہہ سکتا, کوئی ایماندار آدمی نہیں کہہ سکتا کہ تم کو خالی اتنا ہی کرنا ہے جو تمہارے گیان کے انوسار ہو یا وہی کرنا ہے جو تمہارے سامرتھ کے انوسار ہو. میں تو آپ سے یہ نمبر نویدن کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی, گمبھیرتا سے اس بات پر سوچو کہ اگر ہم سامرتھ ورودھی کام کرنے سے انکار نہیں کرتے ہیں, اگر ہم گیان ورودھی کام کرنے سے انکار نہیں کرتے ہیں, گیان کے انوروپ جو کاریہ اس کے کرنے سے انکار نہیں کرتے ہیں, تو کوئی ناراض نہیں ہوتا. ناراض کب ہوتا ہے؟ سامرتھ ہے اور انکار کر دیں, گیان کے انوسار ہے اور انکار کر دیں. سونے کے لیے تو تم کو کمرہ چاہیے لیکن آشرم نہیں چاہیے. پھر یہاں سے نکلیں گے تب انہیں کسی اور کے بنائے ہوئے گھر میں گھسیں گے. تو سنسار میں شریر کی آوشیکتا کے لیے تو آپ کو سنسار چاہیے, پر سنسار کے کام آنے کے لیے تمہاری شادی پڑتی ہے. ساری جوانی چل چل کے برباد کرو گے, ٹکڑے مان مان کر برباد کرو گے, کام نہیں کرو گے, سیوا نہیں کرو گے. یہ جیون کا ستیہ نہیں ہے. جیون کا ستیہ یہ ہے کام کرو کچھ مت چاہو, کام کرو کچھ مت چاہو. تب کیا ہوتا ہے؟ تب تمہارے شاریرک آوشیکتا سمان پوروک پوری ہوتی ہے. آج ہم کو آگرہ ضرورت پڑ جائے تو موٹر مانگنی پڑتی ہے. رام سدھا مہاراج نے چترماس یہاں کیا, سیٹ نے پورے 3 مہینے کی موٹر دے دی, نیا بنا ہوا بنگلہ بھی دے دیا رہنے کے لیے, موٹر بھی دے دی اور سادھوؤں کی بھکشا کا انتظام بھی کر دیا سیٹھوں نے. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ وہ سیٹھوں کی ضرورت کو کہ یہ یہاں آئے, کیول اپنی ضرورت کو لے کر نہیں آئے. اور تم اپنی ضرورت کو لے کر یہاں آئے, سوا آشرم کی ضرورت لے کر نہیں آئے. اس لیے تمہیں آدر نہیں ملا, پیار نہیں ملا, سنمان نہیں ملا. روٹی تو ملی, 8 برس تک تم نے کھائی روٹی. تو میں آپ سے یہ نمبر نویدن کر رہا ہوں کہ یہ بھرم نکال دو کہ تم رچی पूर्ति करते रहो और तुमको शांति मिल जाए, ये किसी काल में नहीं मिलेगी और आज तक किसी को नहीं मिली। शांति उसी को मिली है जो दूसरे के काम आया है, अथवा जो अचा हो गया है, अथवा जो शरणागत हो गया है। चाहे तो प्रभु की शरणागत होकर प्रभु के नाते सेवा करो, चाहे अचा होकर आत्मा के नाते सेवा करो, चाहे उदार होकर जगत के नाते सेवा करो। सेवा करने से जान बचेगी नहीं। कितने भटक लो, अनुभव कर लो, भटक लो, देख लो, जान नहीं बचेगी। हाँ, सुख की रास्ता दुख के भय में बंधे रहोगे सेवा नहीं करोगे तो। अगर सेवा करोगे तो सुख की रास्ता भी नाश हो जाएगी, दुख का भय भी नाश हो जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी, मुक्ति भी मिल जाएगी, भक्ति भी मिल जाएगी। ये जीवन का सत्य है।
अभी आपने पर पीड़ा से द्रवीभूत हृदय से निसृत संत वाणी में मनुष्य के व्यक्तित्व को संपूर्णता से प्रकाशित करने वाले चिरंतन सत्य को सुना। व्यक्ति के कल्याण एवं सुंदर समाज के निर्माण संबंधी कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान प्रस्तुत संत वाणी के अनुसरण से न हो जाए। श्री महाराज जी के अनुसार मानव जीवन का सुंदरतम चित्र यह है कि शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए, हृदय परम प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। इस आदर्श को उन्होंने अपने जीवन से हमें दर्शाया और अपने महाप्रयाण से भी यही पाठ पढ़ाया। जब उन्हें यह विदित हो गया कि उनका शरीर अब समाज की सेवा के योग्य नहीं रह गया, तब उस शरीर को त्यागने का समय, तिथि एवं विधि भीतर ही भीतर निश्चित कर लिया और कहने लगे, मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ। शरीर के नाश से मुझे दुख नहीं होगा, मैं बहुत आनंद में रहूंगा। बीच की यह उपाधि हट जाएगी तो भक्त और भगवान के अनंत मिलन का अनंत आनंद रहेगा। इसलिए इस शरीर के छूटने पर शोक सभाएं नहीं होंगी, सत्संग समारोह होंगे। शरीर की बैकुंठी नहीं सजेगी, प्रोसेशन नहीं निकलेगा, मैं क्रांतिकारी सन्यासी हूँ। तुम लोग विधि विधान में मत पड़ना, कुटी में से पार्थिव शरीर को निकालकर आंगन में रखकर भस्म कर देना। शरीर की भस्मी मिट्टी में मिला दी जाएगी, खाद बन जाएगा, घास उगेगी, पशुओं का चारा बनेगा। समाधि स्थल पर कोई चिन्ह नहीं बनेगा, फूल नहीं चढ़ेगा। साधना का नाश नहीं होता है, अतः सेवा त्याग प्रेम का व्रत विभू होकर जन समाज में फैलेगा। इस शरीर की सेवा में जिसकी रुचि है वह मानव सेवा संघ की सेवा करे। संघ मेरा शरीर है और वह स्थायी रहेगा। जो लोग मुझे प्यार करते हैं वे भगवान को प्यार करें, क्योंकि भगवत प्रेम मेरा जीवन है। जो उपदेश था भगवत विश्वास की जगह पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, वे घोर अनर्थ करते हैं। सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। व्यक्त जगत की विविधता के भीतर अव्यक्त नित्य प्रेम तत्व के एकत्व के दर्शी संत ने कहा, कोई गैर नहीं है, यह धर्म का मंत्र है। कोई और नहीं है, यह प्रेम का मंत्र है। प्रिय साधको, इस सत्य को मानो। सर्वसमर्थ प्रभु तुम्हारे अपने हैं, उनके होकर रहो, उन्हीं का काम करो। और यह सद्गुरु का आशीर्वचन है कि उन्हीं में तुम्हारा नित्य वास होगा। अमृतमयी वाणी को सुनाकर योग स्थित होकर नाशवान शरीर को स्वेच्छा से त्याग करके उन ब्रह्मनिष्ठ ने जीने और मरकर अमर होने की कला हमें सिखाई। उन संत शिरोमणि के चरणों में हमारा शत शत नमन। अब सर्वहितकारी प्रार्थना करें। मेरे नाथ, आप अपनी सुधा मई सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम शांति शांति शांति।